समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
विद्या ददाति विनयम्, विनयात् याति पात्रताम्, पात्रत्वाद् धनम् आपनोति, धनात् धर्मम् ततः सुखम्। अर्थात विद्या हमें विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन मिलता है, धन से धर्म और फिर सुख की प्राप्ति होती है। और वो कहते हैं ना कि ज्ञान को जितना बांटो वो बढ़ता ही जाता है। तो आइए इस सुबह विद्या के दान का संकल्प लें, चाहे अपने से छोटों को कुछ नया सिखाना हो या कुछ नया सीखना हो, आज ही इसकी शुरुआत करें। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग आकर्षिता, एंड हेलो लिसनर्स, वी वेलकम यू ऑल टू अनदर इंटरेस्टिंग एडिशन ऑफ आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। सो स्टे विद अस थ्रू आउट द प्रोग्राम, एंजॉय एज वी किक स्टार्ट विद सम न्यूज हेडलाइंस।
भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल ने नई दिल्ली में शुरू हुई दो दिनों की कार्यशाला के दौरान वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों पर एक प्रस्ताव पारित किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में भाजपा सांसदों ने इस साहसिक और जनहितैषी कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है और उन्हें बधाई दी है।
Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of BJP MP's training program in New Delhi today. The two-day workshop started at the Bal Yogi Auditorium in Parliament Complex yesterday. Senior BJP leaders and members of Parliament are exchanging their valuable perspectives on diverse issues at the workshop. In a social media post, Prime Minister said that the platforms like Sansad, Karyashala are important because they are great forums to learn from each other and deliberate on how we can serve people even better. During the workshop, BJP MPs will also be given basic training in voting procedures for the vice presidential election scheduled to take place tomorrow. Talking to media after the first day of the workshop, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said Prime Minister was present in all the training sessions.
भारतीय जनता पार्टी का सारा एमपी का सुबह से रात तक हमारा कार्यशाला चली है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी शुरू से अंत तक रहा है, क्योंकि हमारा बीजेपी का ये संस्कृति है कि हमारा नेता हो या आम कार्यकर्ता सब एक ही है और आगे पीछे बैठना ऐसा हमारे यहाँ कोई सिस्टम बना के रखा नहीं, और इसमें औपचारिक तौर पर कार्यक्रम तो चलता है लेकिन बैठने का औपचारिक नहीं होता है, सब जहाँ चाहे वहाँ बैठते हैं। प्रधानमंत्री जी भी आखिरी सीट में बैठते हैं जाके, प्रधानमंत्री जी को मार्गदर्शन देना ही होता है, हम लोग सब आखिर में तो उनसे सुन करके फिर आगे का काम तय करना होता है।
On this Independence Day at the ramparts of Red Fort, Prime Minister Narendra Modi announced the next generation of GST reforms by Diwali. The Prime Minister's vision of creating a more efficient and citizen-friendly economy was realized as the GST Council on 3rd September approved rates rationalization with a focus on common man. The Council has simplified the indirect tax system in a two-tier structure of 5% and 18% from a four-tier structure of 5%, 12%, 18% and 28%. These reforms have reduced tax rates in many sectors, easing the life of citizens. Today, we look at the reforms undertaken for renewable energy. Our correspondent reports that the GST reforms have been carried out with a focus on the common man and will come into effect from the 22nd of this month.
In a big reform for the energy sector, GST on renewable energy devices from solar cookers and photovoltaic cells to windmill equipment, biogas plants and waste to energy systems has been cut from 12% to 5%. This is expected to reduce project costs, encourage adoption of clean energy and make green technologies more affordable for households and industries. On the other hand, GST on coal and lignite has been raised sharply from 5% to 18%, encouraging the use of green energy over fossil fuel. Electric vehicles will continue to be under the lowest 5% tax slab, giving further push to clean mobility. The simplified tax system will ease compliance, cut litigation, and accelerate India's transition to clean energy. Industry leaders have welcomed the move, calling it a balanced approach between promoting sustainable alternatives and rationalizing fossil fuel usage. Environment Minister Bhupendra Yadav has hailed next generation GST reforms and termed them as GST reforms for a green India. He added that GST reforms will help in advancing clean and green power adoption, improving waste management, lowering emissions, and protecting ecosystems while maintaining fiscal balance. The steady adoption of solar, wind, and waste to energy projects is critical for meeting India's net zero pledge and nationally determined contributions under the Paris Agreement. With Ishani Yadav's report, Akshit Vaidyan for Akashvani News, Delhi.
बिहार में कल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना का पोर्टल शुरू किया और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक प्रचार वाहनों को रवाना किया। इस योजना के तहत राज्य में प्रत्येक परिवार की महिला को अपनी रुचि का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय सहयोग की पहली किस्त के रूप में प्रत्येक चयनित महिला को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 10,000 रूपए मिलेंगे। ग्रामीण विकास विभाग इस योजना की नोडल एजेंसी होगी और बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति जीविका इसे लागू करेगी। अगले चरण में रोजगार शुरू होने के 6 महीने बाद स्थिति का आकलन किया जाएगा और आवश्यक होने पर चयनित महिला लाभार्थी को 2,00,000 रूपए तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत महिला उद्यमियों के उत्पादों की बिक्री के लिए गांव और कस्बों में स्थानीय बाजार या हाट बाजार विकसित किए जाएंगे।
Sky watchers across the world witnessed a stunning event on last night, a total lunar eclipse, also known as Chandra Grahan. This lunar eclipse, which is the second one for this year, also produced a blood moon. The Earth's shadow started covering the lunar disk at 9:57 p.m. By 11:01 p.m., the Earth's shadow completely covered the moon, turning it coppery red, putting up a rare display of blood moon. The total lunar eclipse peaked around 11:48 p.m., ended at around 12:22 a.m. The lunar eclipse lasted for a little over 48 minutes across India for celestial enthusiasts to witness. The eclipse was visible to the naked eye.
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में नेत्रदान के बारे में भ्रांतियां दूर करने के संबंध में परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्र की प्रोफेसर और नेशनल आई बैंक की अध्यक्ष डॉक्टर नम्रता शर्मा तथा नेशनल आई बैंक के प्रभारी और आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव डॉक्टर राजेश सिन्हा श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से नेत्रदान के विभिन्न पहलुओं और नेत्रदान संबंधी नियमों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371717 और 0112331444 तथा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
And now, friends, news from the world of sports.
In the Men's Asia Cup Hockey Championship, India won their 4th title by a convincing 4-1 win over South Korea in an exciting final at Rajgir in Bihar. With this win, India have ended the 8-year-long wait to regain supremacy in the continent. India have also qualified for the FIH Men's Hockey World Cup 2026. Talking to media after the match, Indian captain Harmanpreet Singh said,
"Target tha, aim tha. Kafi samay se is cheez ke liye hum practice kar rahe the. So finally, aaj jo cheez achieve ki hai, mera aur meri puri team ka next target hai World Cup. As a team defense, humne kafi achhi ki hai aur jo scoring dekh rahe hain, bahut achhi rahi."
Prime Minister Narendra Modi has congratulated the team for their splendid win. In a social media post, Mr. Modi said that this win is even more special because they have defeated the defending champions, South Korea. The Prime Minister said that this is a proud moment for Indian hockey and Indian sports. He also prayed for the country's player to continue to scale even greater heights and bring more glory to the nation. Moving on to tennis, Carlos Alcaraz won his 2nd US Open men's single title by defeating Jannik Sinner and reclaiming the number one ranking in men's tennis.
Your 2025 U.S. Open Men's Singles Champion, Carlos Alcaraz.
the 22-year-old Spaniard, now owns 6 Grand Slam trophies, becoming the first player since 1978 to win multiple majors on all three surfaces before turning 23. And in chess, India's Divya Deshmukh scored her first win in the open category of the FIDE Grand Swiss 2025 in Uzbekistan, defeating Egyptian Grandmaster Basim Amin in the 4th round. Playing with the black pieces, Divya, who recently claimed the FIDE World Cup title, outplayed her higher-rated opponent in a Sicilian defense. With Nandini's report, this is Sayukta Yadav, Sports Desk.
मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और तेलंगाना में आज गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद है। आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ हैं सुभद्रा।
यस आकर्षिता, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड विल सून स्क्रैप ऑल टिकट वेंडिंग मशीन्स अक्रॉस इट्स 41 स्टेशन्स। एवरी स्टेशन हैज 3 to 4 वेंडिंग मशीन्स दैट वंस इश्यू टोकन्स, पेपर टिकट्स एंड रिचार्ज स्मार्ट कार्ड्स। बट आफ्टर phasing out tokens earlier and smart cards this year, passengers have been asked to book it online, app-based ticketing. This might be difficult during peak hour journeys. In August, nearly 49 lakh passengers used the Singara Chennai card, 22 lakh bought QR codes tokens from counters, and 23 lakh used WhatsApp, Paytm, PhonePay and CMRL app, and 2 lakh continued with smart cards. We have another report from Chennai. India's first Raptor Research Foundation has started functioning on the premises of Advanced Institute for Wildlife Conservation on Vandalur Kelambakkam Road. State government had sanctioned 1 crore for the initiative, aimed exclusively at the study and protection of birds of prey. The foundation serves as a nodal body to drive scientific research, habitat preservation and capacity building. Tamil Nadu, which hosts nearly 70 raptor species, offers diverse habitats ranging from forests and grasslands to wetlands, marshes and coastal stretches, making it an ideal state to launch this initiative. State Forest Secretary Supriya Sahu said that the vision of the foundation is to ensure that raptors, which play a crucial role in maintaining ecological balance, receive focused attention and protection. The foundation's work will cover a wide spectrum: species surveys, political assessments, tracking movement across landscapes, ecological studies and evaluating threats from climate change. Bangalore News Now. The Narayana Nethralaya Hospital in Bengaluru had organized an awareness campaign to encourage people to pledge their eyes and give the gift of sight as part of National Eye Donation Fortnight. During their 40th Eye Donation Fortnight, a cyclothon ride for sight was also organized with a message to give sight. Corneal blindness remains a pressing health challenge in India, with over 1.3 million people affected by blindness in both eyes and over 10 million suffering several visual impairment in one eye. The number of patients awaiting corneal transplants continues to exceed the availability of donated corneas. Narayan Nethralaya Medical Superintendent Dr. Naren Shetty has expressed an urgent need to bridge the gap between demand and availability of corneal tissue. He said that the demand for corneas is a little over 2 lakh annually, but only about 22,000 eyes are donated in the country. Dr. Shetty added that if more people come forward to pledge their eyes, the burden of corneal blindness can be significantly reduced. He gave the message that the most precious gift one can give to another person is the eyesight. Hyderabad News Now. Indian Army Southern Command General Officer Commanding-in-Chief Lieutenant General Dhiraj Seth and Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy have discussed civil-military cooperation in disaster preparedness, internal security and the welfare of ex-servicemen. An official release stated that both sides held meaningful discussions on key issues impacting the region concerning military-civil fusion, internal security, veteran welfare, disaster response development initiatives, besides coordinating long-term support measures for veterans and their families. The discussions focused on enhancing joint response mechanism during floods, sharing real-time intelligence inputs to maintain law and order, and coordinating long-term support measures for veterans and their families. And आकर्षिता, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द न्यूज?
और अब खबरें दिल्ली से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे 52 वाहनों को कल नई दिल्ली में झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय प्राकृतिक विपदाओं के कारण देश उलझन और तकलीफ में है। ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस मुसीबत के समय से आगे निकलें। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पंजाब पूरे देश का अन्नदाता और इस समय देश के किसान तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी दिल्ली उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी की ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि गुरु अमरदास जी करुणा और दया के सागर थे, जिनकी दिव्य शिक्षा और महान आदर्श सभी को सत्य, सेवा और समर्पण के मार्ग पर सदैव प्रेरित करते रहेंगे। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में 13 सितंबर को दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाएगा। इस दौरान शहरवासी अपने लंबित यातायात चलान या नोटिस के भुगतान के लिए शहर के विभिन्न न्यायालयों परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल हो सकते हैं। वहीं भूस्खलन के कारण ट्रेन संख्या 22477 और 22478 श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस भी रद्द हो गई है। ये ट्रेनें आज और कल के लिए स्थगित रहेंगी। वहीं नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में कल फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। इस बार फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का मूल विषय गर्व से स्वदेशी था। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक सांसदों के साथ साथ खिलाड़ियों और आम जनता ने हिस्सा लिया। वहीं स्टेडियम में खेल से जुड़े स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें लोग भारत में बने खेल उत्पादों को खरीद सकते हैं। और अब मुंबई से जुड़ी खबरें। बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्रांसपोर्ट उपक्रम ने कल अपने बेड़े में 17 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की हैं। ये सेवा पश्चिमी उपनगरों में ओशिवारा डिपो और दक्षिण मुंबई में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक के बीच चलेगी। और आइए अब जानते हैं कोलकाता से खबरें। पश्चिम बंगाल उच्चतर माध्यमिक परिषद की तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा आज से शुरू होगी। ये पहली बार है जब परीक्षा ओएमआर प्रारूप में ली जाएगी। इस बार राज्य बोर्ड की परीक्षा में 6,60,000 छात्र हिस्सा लेंगे। ये परीक्षा 22 सितंबर तक चलेगी। परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होगी और 11:15 पर समाप्त होगी। संगीत, दृश्य कला और व्यावसायिक विषयों की परीक्षा सुबह 10:45 तक चलेगी। और आइए अब जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल। सबसे पहले दिल्ली का मौसम। आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के साथ तूफान की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं मुंबई में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहने का अनुमान है। और कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है।
Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 25 degrees Celsius. Maximum will be around 34. Bengaluru is expected to have rain or thunder showers towards afternoon or evening. Minimum temperature was 20 degrees Celsius. Maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is also expected to have partly cloudy sky with haze. Temperature will hover between a minimum of 24 and a maximum of 32 degrees Celsius.
और आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
Yes, Akarshita, you talked about literacy when we started the program, right?
जी।
So promoting literacy in the digital era now is this is the theme of our International Literacy Day today, observed across the world with various events. And of course, this important day was celebrated by the United Nations Department of Education and Culture for the first time in the year 1966.
विश्व साक्षरता दिवस, अगर हम बात करें उसकी सुभद्रा, तो वो एक संकल्प है और हर व्यक्ति को साक्षर बनाने और जिंदगी को शिक्षा के उजाले से जोड़ने का एक बड़ा संकल्प है। और हर साल ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि शिक्षा सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि बेहतर जीवन की कुंजी भी है।
Yes, and talking about the theme itself, digitalization is in the current scenario, this will change the way we live with its remarkable tools that help us achieve our goals. And
और अगर बात करें तो सिर्फ पढ़ना लिखना और सीखना ही साक्षरता नहीं है, बल्कि ये इंसान के जीवन की गरिमा, समानता और अवसरों से भी जुड़ी है। तो अगर हम बात करें महिला और पुरुषों की, तो एक तरीके से जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा के कारण भी बहुत है, अभी गांव में, कस्बों में। तो हमें लगता है कि आज के दिन जो हम ये विश्व साक्षरता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसे सिर्फ शहरों की महिलाएं नहीं बल्कि गांव की महिलाएं भी वहां से प्रेरित होंगी कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए।
ट्रेडिशनल एजुकेशन एक्चुअली द सिस्टम कैन गो हैंड इन हैंड विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस, राइट? ओके, एंड नाउ गेटिंग टू सम इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ द डे। On this day, 1858, Abraham Lincoln delivered a speech in which he is famously quoted as saying, "You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you can't fool all the people all the time." And in 1916, this happened, the other event. Two sisters from New York, USA, Augusta Van Buren and Adelaine Van Buren, rode 5,500 miles in 60 days to cross the continental United States, each on their own motorcycle, completing on 8 September 1916. This was achieved to prove that women were capable of serving as military dispatch riders.
और आज के दिन ही 1952 में जिनेवा में कॉपीराइट के लिए पहले विश्व सम्मेलन में भारत समेत 35 देशों ने हस्ताक्षर किए थे।
And 1945, this day, the end of World War II, the first U.S. troops entered the Korean Peninsula south of the 38th parallel to receive the Japanese surrender. North of the parallel, Japanese troops surrendered to Soviet forces.
और आज के दिन ही 1991 में मैसिडोनिया गणराज्य स्वतंत्र हुआ था।
1954, the South East Asia Collective Defense Treaty was signed on this day in Manila, and as part of the American Truman Doctrine. And in 1986, Oprah Winfrey Show made its first national broadcast, marking the beginning of an influential, enduring talk show that would touch the lives of millions.
और आइए अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
Yes, friends, birth anniversary of multifaceted personality from Assam, Dr. Bhupen Hazarika, who took birth this day in the year 1926. Celebrated for his work as a playback singer, lyricist, musician, poet, actor, filmmaker and politician, he recorded or cut his first long playing record when he was just 10 years old, and his first role as an actor was for the Assamese movie Indramalathi, made in 1939.
जी हाँ, भूपेंद्र हजारिका पहले शख्सियत थे जिन्होंने असमिया संस्कृति को विश्व मंच तक पहुंचाया था। भूपेन हजारिका एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। बचपन में ही उन्होंने अपना पहला गीत लिखा और 10 वर्ष की आयु में उसे गाया भी। असमिया भाषा की फिल्मों से भी उनका नाता बचपन से ही जुड़ गया था। उन्होंने असमिया भाषा में निर्मित दूसरी फिल्म इंद्रमालती के लिए 1939 में 12 वर्ष की आयु में काम भी किया। सुर सम्राट हजारिका ने करीब 70 साल तक अपनी आवाज से पूर्वोत्तर के साथ बॉलीवुड में भी छाए रहे। हजारिका ने अपनी फिल्म का निर्देशन 1956 में किया। उन्होंने एरा बतर सुर से अपनी फिल्म का पहला निर्देशन किया। फिल्म रुदाली के गीत दिल हूं हूं करे के जरिए हजारिका हिंदी फिल्म जगत में भी छा गए। इसके अलावा हजारिका ने दमन फिल्म में गुमसुम गाना भी गाया। भूपेन ने मैं और मेरा साया, एक कली दो पत्तियां, हाँ आवारा हूं, उस दिन की बात जैसे कई गीत हिंदी गानों में दिए और ओ गंगा बहती हो क्यों को अपनी आवाज और संगीत भी दी। आइए सुनते हैं उनके ये गीत।
दिल हुम हुम करे घबराए, घन धम धम करे कर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हुम हुम करे घबराए। रजा दोनों पार करी हाहाकार, निःशब्द सदा ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों, आवारा हूँ, हाँ आवारा हूँ, जमी पे चलते छलकते बहते दरिया की धारा हूँ। आवारा हूँ।
यही नहीं, बिहू के गीतों में भूपेन हजारिका ने अपनी चिरजीवी आवाज दी है और गांधी टू हिटलर फिल्म में महात्मा गांधी के प्रसिद्ध भजन वैष्णो जन को उन्होंने ही अपनी आवाज दी। उन्हें संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए सुनते हैं उनका एक साक्षात्कार।
Well, I was supposed to work in All India Radio after coming back with the degree, but then I was hijacked by arts and music and my teaching in the university also. I was hijacked by music and motion picture camera and the microphone. So I took song as type of instrument for little social change. Since then, I have been troubled and I have been creating, of course, that trouble has given birth to quite a bit of lyrics and I became a lyricist first. And then tune also came parallelly to me. The first grammar of Indian music, classical music, I acquired in Banaras.
And friends, now 1840, we are now taking you to the European classical music musicians world. Composer Antonín Dvořák is born in Prague, Czech. That was part of Bohemia in the Austrian Empire. He was also the first Bohemian composer to achieve worldwide recognition. He was noted for turning folk material into 19th century romantic music. And during his time in America, Dvořák produced three of his most famous works: String Quartet No. 12, known as The American, Cello Concerto in B minor, and the New World Symphony. It's also called Symphony No. 9. And friends, bassist, co-lead singer and co-founder of the very popular new wave rock band The Cars, Benjamin Orr was born this day, but sadly he passed away from cancer at age 53. And of course, Ben sang lead vocals on many of Cars' hit singles. Here's a melodic one, Who's Going to Drive You Home, dedicated to Ben. Here goes. He was called the Gentle Giant, country crooner from Texas with a smooth voice. Don Williams left us this day at the age of 78. Of course, many of his songs were number one hits. And besides his singing, he also acted in, known for Smokey and the Bandit, WW, the Dixie Dance Kings, and the Wendell Baker Story.
In the shelter of your eyes, I have finally learned my song.
आज मशहूर पार्श्व गायिका और लता मंगेशकर की छोटी बहन और दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री आशा भोसले का जन्मदिन है। आशा जी ने फिल्मी और गैर फिल्मी जगत के लगभग 16,000 गाने गाए और इनकी आवाज के प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उन्होंने 800 से अधिक फिल्मों में 10,000 से ज्यादा गाने गाए। उन्होंने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर की छत्रछाया में पार्श्व गायन प्रारंभ किया।
चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरे तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम, हो ले लिया दिल, ओ हाय मेरा दिल, हाय दिल ले कर मुझको ना पहलाना, चुरा लिया है।
1957 में दिलीप कुमार और वैजयंती माला अभिनीत नया दौर फिल्म के मां के साथ तुम्हारा गीत से आशा ने लोकप्रियता हासिल की। 1943 में आशा भोसले ने अपनी पहली फिल्म माझा बाद में गीत गाया। ये गीत चला चले नवाला दादा दामिश्कर ने संगीत किया था। 1947
बचपन में क्या होता है कि बड़ी बहन की नकल छोटी बहन करती है, तो दीदी जैसा गाती थी वैसा मैं गाती थी। लेकिन मैंने जब देखा कि दीदी लता मंगेशकर का नाम इतना बड़ा हो गया, तो उसकी जैसे गाने वाले को गाना कौन देगा, उसकी अपनी जगह कुछ नहीं होगी। लोग सब कहेंगे कि अरे बहन जैसा गाती है वो लता नहीं है, वो जैसा जो है वो मुझे लाइफ में पसंद नहीं है, मुझे चाहिए कि मैं खुद क्या हूँ, वैसा मेरा गाना मेरा होना चाहिए। तो फिर मैंने ये शुरू किया कि गाना दीदी कैसा गाती है उसको बिल्कुल अलग से निकल जाने का। तो बचपन में मैंने कैरमन मरांडा का गाना बहुत सुना था, पिक्चर देखते थे छोटे छोटे थे जब, तो कैरमन मरांडा गाती थी मम 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 कैरो मम।
और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार, नमस्कार।